आज कम आ रहे हैं।
माणिक भक्ति में तिथा वर्तन इसका
देखिए पंचाशी गाय में 111 नंबर की जो गाथा है वो प्रक्षिप्त गाथा है। प्रक्षिप्त जानते किसको कहते हैं? प्रक्षिप्त माने जो मूल में पहले नहीं थी बाद में आई गई है, उसमें कहीं से भी उसका प्रवेश हो गया है, ऐसी वो गाथा है। उसमें क्या आया है मैं बता देता हूँ। उसमें ये लिखा है कि जो पांच भेद है एक इंद्री के, जो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, उन पांच भेदों में तिथावर शब्द है कि तीन तो है स्थावर शरीर वाले, ये लिखा है, और दो का नाम आगे आया है अनल और अनिल, माने हवा और पानी, माने अग्नि और पानी, ये दो जो है त्रस है। क्या लिखा है? त्रस है। तो दो को त्रस लिखा है, मूल गाथा में लिखा है और अनुवाद में भी लिखा है, और तीन को स्थावर लिखा है, और बाद में लिखा है कि वैसे पांचों ही मन परिणाम से रहित हैं और एकेंद्रीय है, ये लिखा है। तो वास्तव में इसमें क्या गड़बड़ बात है, अमृतचंद्राचार्य ने इसकी टीका ही नहीं की। तो पहली तो बात ये है, अमृतचंद्राचार्य ने उसकी चर्चा ही नहीं की इस गाथा की, 111 गाथा की। अभी हमने जो नया पंचाशती का है निकाला है उसकी प्रस्तावना में इसका खुलासा किया है कि इसमें कुल गाथाएं कितनी हैं, ये पता लगाया। रियल गाथाएं अमृतचंद्रा के अनुसार कितनी, तो 171 पता चली, क्योंकि जो जयसेनाचार्य की टीका जब शुरुआत की तो उसकी उत्थानिका में लिखा था गाथा संख्या, और उसमें ये लिखा था जयसेनाचार्य के अभिप्राय से पहले अध्याय में तो 111 गाथाएं, और वे उसी अध्याय में अमृत चंद्राचार्य के अनुसार 103 गाथाएं, फिर दूसरे अध्याय में जयसेनाचार्य के अनुसार 49 गाथाएं, और अमृत चंद्राचार्य के अनुसार उन्हीं में 48 गाथाएं। तो मैंने कहा पहले अध्याय में भी एक गाथा बढ़ गई, 103 चाहिए, लेकिन मौजूदा जो पंचाशती काय के जितने भी एडिशन छपे उन सब में 104 पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में सभी में 49, और तीसरा अध्याय तो 20 गाथाओं का है, वो सब में 100। तो जब हमने देखा कि दूसरे अध्याय में भी एक कम है, 48 चाहिए था पर 49 है, तो मुझे विचार आया कि खोज की जाए कि इनमें दो कौन सी गाथाएं मिलाई गई, ये पता लगाया। तो उसमें हमें एक गाथा तो मिली पहले अध्याय में, वो मिली 24 नंबर की गाथा, वो 24 नंबर की गाथा का विषय जो 23 में आ चुका है वो रिपीट हुआ है, और ये बात हम जयसेनाचार्य ने लिखी भी है, पुनरपि काल द्रव्यम निरूपयति, फिर से हम काल द्रव्य का निरूपण करते हैं या उसको समझाते हैं। तो 24 पे भी अमृत चंद्राचार्य ने कोई टीका नहीं लिखी, न उसका संकेत किया, न उस पर कोई टीका लिखी, और एक ग्रंथ ऐसा मिल गया अंग्रेजी जिसका अनुवाद हुआ है, उसमें तो वो गाथा के विषय में चर्चा ही नहीं है कि नहीं है, वो गाथा ही नहीं उपलब्ध ही नहीं। तो हमने सोचा कि इसका पता लगाना और ये तय करना कि कितनी गाथाएं, तो जयसेनाचार्य ने जो गाथाओं की संख्या 103, 48 और 20 कितनी हो गई, 171, लेकिन मौजूदा ग्रंथ में कितनी है, 173। तो वो दो गाथाओं की खोज करने के बाद ये पता लगा कि इसमें जो 111वीं गाथा है वो तो किसी ऐसी मान्यता वाले ने मिलाई है जिसकी ये मान्यता हो कि अग्नि और वायु त्रस, जबकि अग्नि और वायु त्रस नहीं, पांचों एकेंद्री होने से सब स्थावर, और स्थावर काय का उनके इस प्रकार का उदय भी चल रहा है। त्रस तो दो इंद्री से चालू होते हैं, कहां से चालू होते हैं, द्विंद्रिया दैश त्रिशा, दो इंद्री आदि से लेके आगे के सब जीव त्रस है, उसमें 14वें गुण स्थान तक त्रस, समझ लें, आयसन में सिद्ध भगवान त्रस स्थावर वाला भेद में नहीं आ,
तो वे तरस के भेद वाले उसे अतीत हो गए। तो ये चीज जब वहां मिली तत्व और सूत्र की देखी, तो मैंने अपना समाज का श्वेतांबर ग्रंथ भी एक देखा, तत्व और सूत्र निकाला और वही सूत्र निकाला जो का था। तो उसमें हमें ये लिखा मिल गया सूत्र में, अपने वाले में क्या लिखा मिला कि द्वि इंद्रिया दश दशा, और उसमें ये लिखा मिला अग्नि वायु द्विंद्रिया दश दशा, ऐसा लिखा। तो हमारे ख्याल में आ गया कि ये किसी ने, इस मान्यता वाले ने ये गाथा मिलाई है, सो वो गाथा भी पूरी नहीं बना पाए बेचारे। एक लाइन में वो तिथावर तन योगा अनल अनिल चतशा, ऐसा बस एक लाइन बनाई है, और दूसरी लाइन अगली गाथा में की नीचे की लाइन लेके लिखी है, ज्यों कथा। तो हमने बड़े राजवार्तिक देखा, तबला देखा, और भी ग्रंथ देखे, और उनमें लिखा मिल गया कि वास्तव में ये मान्यता गलत है कि उनको त्रस मानना, उसमें इसलिए वो त्रस मानने की जो मान्यता गलत है वो मिलावट वाली है, और 24 नंबर गाथा काल द्रव का विशेष समझाने के लिए लिखी है, वास्तव में मूल में नहीं थी। इतना ये दो गाथाएं पढ़ गई है और प्रक्षिप्त हो गई, और ऐसी प्रक्षिप्त होने की पद्धति हर ग्रंथ में मिलती है। समय सार की गाथाएं 415 है रियल में तो, लेकिन उसकी अभी उपलब्ध गाथाएं जो जयसेनाचार्य की 438 है, अजन में प्रवचन सार में भी मूल गाथाएं अलग संख्या है, और उनकी जयसेनाचार्य की टीकाएं उसमें ज्यादा है, और अभी पंचाष्टी काल में भी उनकी 181 और उसमें रियल में 171 ये गाथाएं बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ी उसका भी अपन ने स्पष्टीकरण किया, उनमें वर्णन क्या आ गया, क्यों बढ़ गई, कैसे बढ़ गई, ये सारी बात उस उल्लेख में आई है। ये गाथाओं के विषय में कहा। हाँ, एक बात जरूर आज आपके यहाँ देखा था, अपन ने ग्रंथ जो तुम्हारे से रायचंद ग्रंथमाला का छपा ग्रंथ है 1904 में छपा है, उसमें वो जितनी भी टीकाएं अभी हमें उपलब्ध मिली जयसेनाचार्य की, उन सब में यही संख्या लिखी है, कौन सी, 103 48 और 20। लेकिन अभी जो मंगलायतन से छपा है एक ग्रंथ, देखो मंगलायतन वाला इस ग्रंथ में दो शब्द का चेंज नजर आ रहा है, वो चेंज आने के कारण उसमें 49 लिखी है और 48 हो गया। बस इतनी
अच्छा, मैं पहले बताना भूल गया था कि जो आज तक जो रूल्स हमने रखे हैं कि दो दो मिनट में कोई आंसर आ जाए तो सब क्वेश्चन करोगे,
क्वेश्चन थोड़ा
ठीक है। अगला प्रश्न है राकेश जी के लिए, भाव और भाव, भाव शक्ति और अभाव और अभाव अभाव शक्ति में क्या अंतर है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति में इनके क्या योगदान है।
वैसे अभी इसका विषय तो आया ही नहीं है, अपने शक्तियों की चर्चा नहीं करी है,
तो उसके
हाँ उसका
दे सकते हैं उनका आंसर,
कल उसका उत्तर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नवे जी के लिए है, ज्ञान पर्याय परिणाम उपयोग और दृष्टि में क्या अंतर है।
ज्ञान पर्याय,
ज्ञान पर्याय परिणाम
और
उपयोग और दृष्टि,
कौन सी डिक्शनरी में से लाए सब, उसी में इसके अर्थ भी लिखे। परिणाम शब्द बहुत व्यापक है, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय को परिणाम शब्द से भी कहते हैं, और उत्पाद व्यय द्रव्य को भी, तीनों को भी परिणाम शब्द से भी कहते हैं। ज्ञान पर्याय तो क्लियर है कि जानने वाला पर्ण मन है ज्ञान का, वो ज्ञान पर्याय है, और उपयोग जरूर जो है वो समझ लीजिए ज्ञान का विशिष्ट व्यापार रूप पर्ण मन है, बाकी विशेष पर्ण आप ग्रंथों से और प्रवचनों से प्राप्त करें।
अगला सवाल भी बाबा जी के लिए है, प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में ही होता है, तो अकाल नय और दैव नय को अलग से,
ये तो पांच समवायों की बात है, अपने स्वकाल में होता है ये तो काल की अपेक्षा उस कार्य का कथन है, एक काल के अलावा और चार फैक्टर और होते हैं उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो अकाल नय कहलाता है। ये इसलिए जरूरी है कि लोगों में अकाल से भ्रम हो जाता है कि समय के पहले हो गया, उसको तोड़ने के लिए स्पष्टीकरण जरूरी है कि उसमें समझ लीजिए भवितव्यता पुरुषार्थ आदि समवाय भी है, इसका ज्ञान कराने के लिए अकाल न्याय का वर्णन आया है। दैव ने वो पुरस्कार न्याय के साथ में है, वहां पर दैव का अर्थ कर्म का उदय या उपशम क्षय उपशम है, वो कर्म की उदय व्यवस्था को दैव या भाग्य शब्द से बोला जाता है। मुक्ति भाग्य से होती है कि पुरुषार्थ से? तो पुरुषार्थ पुरस्कार न्याय से देखें तो वो छाई श्रेणी वाली पुरुषार्थ से होती है, तो दैव न्याय से यानी भाग्य से बोले तो कर्म का क्षय हो गया, यही भाग्य है, इसको ही भाग्य बोला है ऐसे।
अगला सवाल भी भाई जी के लिए है, व्रत तप आदि क्रियाएं व्यवहार व्यवहार नहीं है किंतु व्यवहार नहीं के विषय है, ये बात बराबर है?
व्यवहार नहीं के विषय माने आपको उसका रेफरेंस समझना पड़ेगा कि जब मोक्ष मार्ग की बात चलती हो तब उस पर मोक्ष मार्ग का आरोप किया जाता है, इसका नाम है उसको व्यवहार नहीं ने मोक्ष मार्ग कहा, ये व्यवहार नहीं ने अपना विषय बना लिया उसको। लेकिन जब क्रिया के एंगल से मार्ग चलती हो तो क्रिया है, उसका दो तरह से निरूपण होता है, ग्रसित संयम आदि पुद्गल की क्रिया है ऐसा कहना निश्चय है, और उसमें जीव का भाव निमित्त है तो जीव की क्रिया है ऐसा कहना व्यवहार नय है। तो क्रिया में नय नहीं होती, क्रिया के निरूपण में दो नय होते हैं, टोडरमल जी ने ओवियावासी प्रकरण में अच्छा खुलासा किया है, लोग के लिए बहुत जरूरी है। लोग क्या समझते हैं कि हम जो आत्मा की चर्चा करते हैं या आत्मा की श्रद्धा है, हमको आत्मा की रुचि है, वो तो हमारा निश्चय फैक्टर है। अरे लोग तो अपन लोग सोनगढ़ वालों को निश्चय वाला कहते हैं, अपन स्वाध्याय करते हैं वो निश्चय वालों का काम है, और जो ग्रसित संयम करते हैं वो व्यवहार वालों का काम। ये स्वाध्याय की क्रिया है भाई साहब, और इसे भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, तो ये अलग अलग संदर्भ में समझना चाहिए।
अगला भी आपके लिए है, पर्याय काल का प्लीज कंफर्म, ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसको प्लीज कंफर्म कीजिए, पर्याय काल का अंश है या स्वभाव है, उसका भाव औदयिक है?
बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा गहराई से सोचा होगा उन्होंने। देखिए वास्तव में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन चारों में अगर अपन डिवाइड करें तो सम्यक दर्शन को कहां बिठाएंगे? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इनमें अगर डिवाइड करें तो वो भाव में बैठेगा, उपशम भाव चाहे उपशम भाव चाहे भाव इसमें बैठेगा, और द्रव्य गुण पर्याय में बिठा ले तो कहां बैठेगा? पर्याय में बैठेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याय में काल और भाव दोनों चीजें शामिल होती है, पर्याय की जो पहचान है वो भावों से होती है कि उस पर्याय में कौन सा भाव था, उदय था, उपशम था, चय था, चय उपशम था इत्यादि। लेकिन भाव को जब चार चीजें हैं और सम्यक दर्शन भाव में बैठ गया तो काल क्या है? तो त्रिकालवर्ती जो अखंड प्रवाह है द्रव्य का, वो तो त्रिकाली अखंड, वो द्रव्याथिकने का विषय है, काल द्रव्याथिकने सुकाल, और प्रति समयवर्ती जो उत्पाद रूप अंश होता है कालवर्ती, एक सेकंड दो सेकंड एक समय, वो कालांश, वो पर्याय, कालांश को पर्याय कहते हैं, और उसमें जिस पर्याय में जो भाव होने योग्य है जिस अंश में वो भाव उस काल में उत्पन्न होता है, इस तरह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से समझना चाहिए। और मैंने कहा सुकाल में उत्पन्न हुए ऐसा स्वभाव है, काल ऐसे क्या है कि पर्याय अपने सुकाल में उत्पन्न हुए ऐसा स्वभाव है, ऐसी योग्यता को धारण करती है, तो सब अखंड, लेकिन समझने के लिए ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भेद करते।
इसका लास्ट पार्ट है, शुद्धनय अपेक्षा अशुद्धता पर्याय दृष्टि है, कैसे कृपया स्पष्ट करें?
पर्याय दृष्टि तो बहुत सारी है, शुद्ध पर्याय की भी दृष्टि, वो भी पर्याय दृष्टि है, अशुद्धता पर्याय दृष्टि है का मतलब अशुद्धता पर्याय आर्थिक नय का विषय है, और जो शुद्ध स्वभाव है एक अखंड अभेद वो द्रव्य आर्थिक नय का विषय है, और बाकी आप उसमें पढ़िए जो नए प्रज्ञापन है उसमें।
अगला प्रश्न है चेतन भाई के लिए, आपके प्रवचन में आता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत सरल बात है, तो इनकी शॉर्ट में सरलता से विधि बताने की कृपा करें।
सम्यक दर्शन प्राप्त करना वो सरल बात है, उसमें ऐसा है कि यथार्थ वस्तु का जब निर्णय होता है, वो निर्णय यथार्थ हो गया तो उसको वो सरल लगता है। तो कीमत उसमें निर्णय की है, द्रव्य का और पर्याय का यथार्थ रूप से उनके स्वभाव से अगर निर्णय किया जाए तो अनुभूति एकदम सरल है, मगर वो स्वभाव से जब तक उसका निर्णय नहीं करता है तब तक उसको कहीं न कहीं वो पर्याय या तो द्रव्य से होती है ऐसा लगता है, या तो पर्याय पर से होती है ऐसा लगता है, या तो द्रव्य में कुछ परिणमन अभी हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो अगर द्रव्य को उसका अपरिणामी स्वभाव से देखे, पर्याय को उसका परिणमता स्वभाव से देखे, और कर्म को कर्म में देखे, और जब उसका ज्ञान करना हो तो पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध भी उसको जान ले यथार्थ रूप से, और उसको क्षणिक उपादान से देखे, और द्रव्य को जैसा उसका स्वभाव अनंत गुणात्मक असंख्यात प्रदेशी त्रिकाल काल से है ऐसा अगर निर्णय तत्व का उसको द्रव्य गुण पर्याय का हो जाए तो अनुभूति अत्यंत सरल है, ऐसा गुरुदेव बार बार फरमाते हैं।
चेतन जी आपके लिए यही है, और गुजराती में प्रश्न लिखा है तो मैं गुजराती में करूंगा, शुरुआत हिंदी में दे सकते हैं। तेरहवीं गाथा में एक तरफ से आप कहते हो कि नव तत्वों को निरपेक्ष देखना चाहिए, क्योंकि वो दृष्टि स्वदृष्टि पर द्रव्य पर दृष्टि जाए। दूसरी ओर से समय साहब की अनेक गाथाओं में कहते हैं कि राग पुद्गल की प्रोडक्ट है, निरपेक्ष नहीं है। ये परिस्थिति में आत्मा की प्राप्ति करने के लिए क्या करना?
राग पुद्गल का है, उसके बहुत अर्थ होते हैं। एक तो पुद्गल के लक्ष्य से होता है इसलिए उसको पुद्गल कहा जाता है, मगर सचमुच में तो राग उसकी विपरीत पर्याय में होता है। पुद्गल में राग होता है वो द्रव्य कर्म की बात है, और यहाँ द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म की उत्पत्ति है उसको राग बोला जाता है। मगर राग पुद्गल का है ऐसा बोलने का अर्थ ये होता है कि राग जो है वो यथाख्यात चारित्र होने से चला जाता है, केवल ज्ञान में राग नहीं है। सम्यक दर्शन की निर्विकल्प दशा में भी अबुद्धि पूर्वक राग होने पर भी उसका लक्ष्य नहीं रहता है, इसी के लिए राग है उसको पुद्गल का बोला गया है। और दूसरा जो भूतार्थ नहीं से नव तत्व को जानना उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो किसी भी पर्याय को अगर होने योग अपने स्वभाव से वो अपने स्वकाल में जैसी होती है ऐसा वो जान ले तो बाद में उसकी दृष्टि वहां नहीं जाती है, उसको पता चल जाता है कि ये पर्याय तो जैसे होने वाली थी ऐसी ही हुई है, उसमें मेरा कुछ कर्तव्य काम नहीं कर सकता है, मैं उसको फिरा नहीं सकता हूँ, मैं उसको अपनी तरफ ला नहीं सकता हूँ, ऐसा उसको पता चल जाता है निरपेक्षता का, तो वो उसको देखना बंद करता है। तो उसके पास देखने की तो दृष्टि में या तो वो पर्याय को देखता है या तो द्रव्य को देखता है। अगर पर्याय को देखना बंद करे तो द्रव्य परिदृष्टि चली जाती है, ऐसा उसका मत।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दृष्टि के विषय में सब स्व द्रव्य में भूत भविष्य की पर्याय निमग्न मानने पर यह निरंतर बदलते वाला सिद्ध होता है, क्योंकि जो अभी वर्तमान है वही पर्याय अगले समय में भूतकाल की हो जाएगी। ऐसे वो निरंतर बदलता रहेगा, उसको एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, अभी दूसरा भी वो सिमिलर क्वेश्चन है, भविष्य गुजराती में अगर भविष्य और भूतकालीन पर्याय हो, डॉक्टर भी खराब होते हैं
भविष्य भूतकाल की पर्याय निमग्न होकर द्रव्य में पारिणामिक रूपे निमग्न होती है। पारिणामिक है तो योग्यता प्रमाण पर्याय कैसे कहा, भविष्य की पर्याय भूतकाल की पर्याय वर्तमान की पर्याय योग्यता वो कैसे है, इसमें भविष्य की पर्याय जो वर्तमान में योग्यता रूप उत्पन्न होती है तो वहाँ उसका पुरुषार्थ क्या होता है।
परम पारिणामिक भाव है वो तो वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से वो परम पारिणामिक भाव है वो दृष्टि में लेने का है और ऐसा ही स्वरूप है। ये तो उसकी जो अंदर में जो रही हुई उसकी प्रक्रिया है वो बताने के लिए, ज्ञान में उस प्रक्रिया को जानने में आता है, मगर वो दृष्टि जो है वो तो निर्विकल्प है। तो दृष्टि जो होती है वो तो अभेदपण देखती है, मगर उसका क्या क्या अंदर में रहा हुआ जो भाव है वो सब दिखाने के लिए ये सब सब बातें खुलते हैं। जैसे वो अनंत गुण है और 47 गुण से उसका वर्णन किया है, तो कारण सुत्पर्याय अनंत है मगर उसका कारण सुत्पर्याय जैसा वर्णन किया, ऐसे ही निमग्न पर्याय का वर्णन किया है, वो ऐसा वर्णन करने से वो कुछ भेद रूप हो जावे या उसमें कुछ परिवर्तन हो जावे, ऐसा ऐसा नहीं है। वो अंदर में परिवर्तन होता रहता है मगर वो दृष्टि में वो जो है वो अखंड भेद एक तरीके ही होता है, वो ऐसा का वैसा ही है बस, इस प्रकार से वो दृष्टि में रहता है, दृष्टि ऐसा ही स्वीकार कर लेती है उसका भाव।
गुण पर्याय व द्रव्यम जो पर्याय आत्मा में उत्पाद्य भी पंचम भाव रूप होकर निमग्न हो जाती है, उन पर्यायों की सत्ता, गुणों की सत्ता, द्रव्य की सत्ता एक द्रव्य में रहती है, तो उनमें संबंध एक क्षेत्रावगाह रूप है या कैसे है?
वो एक ही क्षेत्र में है, एक ही द्रव्य है, एक ही सत्ता है, उसमें कुछ भेद करने का नहीं है। जैसे वो पर्याय भी एक क्षेत्र में रहे होने पर भी वो पर्याय का क्षेत्र कथनचित भिन्न है, इस प्रकार से उसको भिन्न सत्ता तरीके देखने का प्रयोजन है कि वो पर्याय की दृष्टि छोड़ने के लिए उसका उससे द्रव्य भिन्न है, उसकी सत्ता भिन्न है, उसका क्षेत्र भिन्न है, उसका काल भिन्न है और भाव भिन्न है, इसमें ये सब भेद होने पर भी उसको अवैध तरीके एक क्षेत्र एक द्रव्य एक क्षेत्र एक काल और एक भाव तरीके उसको दृष्टि में लेने का।
अगला सवाल है उत्तम चंद जी के लिए। चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां निमग्न है, उसका विशेष स्पष्टीकरण कीजिए।
वास्तव में सामान्य स्वभाव जो है आत्मा का चित्त सामान्य है, और वो सामान्य स्वभाव को जब देखते हैं तो वो दृष्टि का विषय बनता है, वो दृष्टि के विषय में अनेक प्रकार की जो आत्मा की शक्तियां हैं जिनका निरूपण करने में भेद होता है, वास्तव में भी सब अभेद रूप रहती है, शक्तियां भी सब उसमें अभेद रूप और पारिणामिक भाव रूप रहती हैं, और उसके स्वयं के जो गुण हैं वे भी पारिणामिक भाव रूप रहते हैं, और पूरी की पूरी अखंड वस्तु जो है परम पारिणामिक भाव के रूप में जानी जाती है। तो वे भेद नहीं करना तो वे शक्तियां उसमें गर्वित कहलाती है, और भेद करके बोलते हो तो वो व्यवहार से उनको अलग भी बोला जाता है, लेकिन वे वास्तव में स्वरूप से अलग नहीं होती। जैसे अपनी पर्याय द्रव्य से अलग नहीं होती है, गुण से अलग नहीं होती है, ऐसे गुण भी द्रव्य से अलग नहीं होते हैं, क्योंकि तीनों का क्षेत्र कोई भेद नहीं है अभेद। वो अपेक्षा से चित्त सामान्य में उसके जो गुण विशेष है वे भी गर्वित है, और चित्त सामान्य की जो व्यक्तियां या की पर्याय विशेष है वे भी उसमें।
राकेश जी अगला सवाल आपके लिए। असंकुचित विकासत्व शक्ति प्रदेश प्रदेशत्व की पर्याय नहीं है, स्पष्ट आ जाते हैं।
असंकुचित विकासत्व शक्ति ये प्रदेशत्व की पर्याय नहीं है, ये चिद विलास आत्मिका है, मैंने अकेली प्रदेशत्व की पर्याय नहीं है, इसमें प्रदेशत्व को भी एक प्रदेशत्व को भी एक गुण के रूप में तो आप मान सकते हैं, लेकिन ये अनंत गुणों का चिद विलास है, इसलिए असंकुचित विकासत्व शक्ति जो है वो ये कह रहा है कि आत्मा किसी भी क्षेत्र में चला जाए किसी भी काल में चला जाए उसकी जो अनंत गुणात्मक सत्ता है वो जैसी की वैसी रहती है, उसमें कोई संकोच या विस्तार नहीं होता है, इतना ये कह रही है, प्रदेश रूप नहीं है।
हेमचंद जी अगला सवाल आपके लिए। अधिक ज्वलन के अनुमान विषय बोल और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या समानता और तफावत है?
थोड़ा अंतर है यहाँ पर, अलिंगण में जो कहना चाहिए तीसरा चौथा पांचवा गुण, पहले तीसरा इंद्रिय प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय नहीं है आत्मा, और जो चौथा पांचवे से अपन मिलान करें तो चौथे में अनुमेय मात्र नहीं है, माने आत्मा ऐसा ज्ञेय मात्र नहीं है, और अनुमात मात्र अनुमान ही करके जान सके अपने को इतना ही मात्र नहीं है, तो इसका निश्चित किया। लेकिन जब स्वानुभव जिनको होता है प्रत्यक्ष हो तो वहाँ पर जब केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा विचार किया जाता है तो वहाँ पर सब ज्ञान, वहाँ कोई प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होते, इसलिए उसको अनुमान प्रमाण से तो माना जाता है प्रत्यक्ष माने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, तो उसको भी परोक्ष प्रमाण कहते हैं। तो वो अपेक्षा से वो परोक्ष ही रहेगा, लेकिन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है तो उसका तर्क दिया है ब्रह्मदेव जी ने द्रव संग्रह संग्रह गाथा पांचवी। जैसे लोक में अपन कहते हैं मैंने आपको साक्षात प्रत्यक्ष बैठे देखा, तो इसको इसमें अपने जानने में संशय नहीं है। ऐसी निजान भाव से जो पर्याय प्रकट हुई संवेदन प्रत्यक्ष की, उसको अनुमान रूप न कह करके उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। तो वो अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा उसी को परोक्ष कहते हैं। तो इस तरह से दोनों यहाँ पर तो इतना बताना है अलिंगरण में कि आत्मा इतना मत मान के बैठ जाते हैं, तो स्वसंवेदन से उसको वर्तमान में प्रत्यक्ष कर सकता है, केवल ज्ञान तक की प्रतीक्षा मत कर ऐसा।
भरत भाई नेक्स्ट सवाल आपके लिए, पांचवे और छठे बोल नानी के लिए है, बाकी के चार बोल हम सब लोग के लिए है, ये बात बराबर है?
नहीं, ये आत्मा के लिए है, सब बात जो बतानी है वो आत्मा की बतानी है, जैसा वो बता रहे हैं इस प्रकार से आत्मा का जान के, आत्मा को जान के उसका अनुभव करें वो ज्ञानी होते हैं, और इस प्रकार के आत्मा को नहीं जानते हैं वो ज्ञानी होते हैं। बात तो आत्मा की।
दूसरा पार्ट वही लगता है वेरी सिमिलर, हमारे लिए पांचवे और छठे बोल का तात्पर्य क्या है, हमारे लिए पांचवे और छठे बोल का तात्पर्य क्या है?
ज्ञानी को जब अनुभव होता है तो किस प्रकार की स्थिति होती है और किस प्रकार का अनुभव टिका रहता है और किस प्रकार से अनुभव की वृद्धि होके वो क्या क्या उसमें दृष्टि क्या काम करती है और ज्ञान का क्या काम करता है, अनुभव कैसा होता है, वो सब बात उसमें लिखी हुई है। वो सब अपने को ज्ञानी होना है ना, अपन आत्मद्रव्य है, अपन भव्य द्रव्य भव्य जीव है, गुरुदेव के मार्ग में आए हुए, अपने को अनुभव होने वाला है, तो ये सब बात भी अपने को जाननी है, क्योंकि प्रथम समझण में ही भविष्य के समय पुरुषार्थ गर्भित है, वो किस प्रकार से अनुभव होगा तो क्या स्थिति होगी उसमें क्या सावधानी होनी चाहिए, ये सब मार्ग पूज्य गुरुदेव श्री ने पूज्य आचार्य भगवंतों ने जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आए हुए वो सब समझने जैसी चीज है। अज्ञानी है तो मैं अज्ञानी हूं इस प्रकार से उसमें अटक नहीं जाना, ज्ञानी कैसे होते हो, आत्मा का स्वरूप क्या है और उसमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष की स्थिति क्या है वो सब समझ लीजिए।
अगला प्रश्न उत्तम चंद्र जी के लिए, मंदिर जी में स्थापित चिन्ह मुनि अवस्था का है, मुनि के 28 मूल गुणों में अस्नान नामक एक मूल गुण है, तो तीन बिंबों का अभिषेक करना योग्य है क्या?
देखिए पहले तो आपने कहा कि वो जिन बिंब जो है वो मुनि की अवस्था वाला है, वो मुनि की अवस्था वाला नहीं है, वो केवली की अवस्था वाला है, संज्ञा 13वें गुण स्थान वाला है, मुनि की अवस्था 6वें 7वें गुण स्थान की होती है, अथवा आगे भी चढ़ते हैं तो 12वें तक चढ़ सकते हैं, वो मुनि की अवस्था है, लेकिन वो 13वें गुण स्थान वर्ती जिनेन्द्र की अवस्था है, तो ये बात सच है कि 6वें गुण स्थान से स्नान वर्जित हो जाता है, यानी मुनिराज स्नान नहीं करते, करें तो भी मुनिराज नहीं होते, समझे? तो जब मुनिराज 6वें गुण स्थान में स्नान छोड़ देते हैं तो वो एक बार छोड़ा हुआ स्नान अनंत काल के लिए छूट जाता है। क्या कहा? छोर सिद्ध अनंत दशा पा जाते हैं, सिद्ध दशा पा जाते हैं, स्नान का प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए जो हमारी प्रतिमाएं हैं वे तो 13वें गुण स्थान वर्ती वास्तव में अरहंत की प्रतीक है, तो जब मुनि में अभिषेक नहीं होता तो अरहंत का अभिषेक होने का प्रश्न ही आता, फिर आपका एक प्रश्न रह जाएगा, तो फिर उनका ये जो प्रक्षाल और अभिषेक चलता वो करे कि नहीं करे, ये प्रश्न आएगा, तो वो मैं बता देते हैं, वो अवश्य करना है। क्यों करना है? अगर आप 24 घंटे अगर मूर्ति में जो पूरा करकट कुछ भी गिर जाता है उससे मूर्ति मलिन होती रहती, समय समय मलिन होती, अगर उसको रोज प्रक्षाल कर दोगे तो उसमें जो वीतरागता झलक रही है वो मलिन नहीं होगी, वीतरागता पर आवरण नहीं आएगा और वो मूर्ति पूज्य बनी रहेगी, और अगर आपने प्रक्षाल बंद कर दिया उस पर आवरण आ गया तो फिर वो पूज्य नहीं रहेगी मूर्ति, इसलिए प्रक्षाल करना आवश्यक है, और कोई उसको अभिषेक भी नाम देवे तो देवे, लेकिन ये मानना
समानता न रखे कि जैसे जन्म कल्याण का अभिषेक होता है ऐसे हम इस भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक नहीं होता,
स्नान नहीं।
हाँ अच्छा,
अभी नेक्स्ट राकेश जी, ध्रुव में भविष्य भविष्य की
ध्रुव में भविष्य की जो जो योग्यता पड़ी है वह अपने स्वकाल में व्यक्त होती है और दूसरे समय में ध्रुव में चली जाती है, तो ध्रुव एकाकार रूप कैसे रहता है? दूसरा प्रश्न है, ध्रुव में योग्यता का प्रकार, योग्यता का रचा प्रवाह, ध्रुव में योग्यता का प्रवाह चल रहा है वह यह कैसे? ये प्रश्न तो वैसे उनसे पूछना चाहिए था, भरत भाई से, मेरे से पूछा है, कुछ स्पेशल जानने के लिए पूछा है या वैसे ही पूछा है? दूसरी बात यह है, ये जो प्रश्न पूछा गया है मैंने भी एक चिट्ठी बना करके दी थी भरत भाई के लिए कि ये बात मेरे भी गले नहीं उतर रही है कि एक तरफ हम ध्रुव भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ उसमें प्रवाह चल रहा है ये भी कह रहे हैं, एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि वो ध्रुव है, त्रिकाली है और अपरिणामी भी कहते हैं, कूटस्थ भी कहते हैं, माने हम बहुत सारी दृष्टि के विषय को इन भाषाओं में भी प्रयोग करते हैं ना, और फिर ये कहते हैं कि उसमें जब जब कोई पर्याय का जब जब उसका स्वकाल होता है तो वो पर्याय बाहर हो जाती है, हर वर्तमान पर्याय बाहर हो जाती है और भूत भविष्य की पर्याय उसमें अंतर्गर्भित रहती है, तो ऐसे करते हुए तो उसमें परिवर्तन होता रहेगा, फिर वो ध्रुव कूटस्थ अपरिणामी ये कैसे रहेगा? ये मेरा प्रश्न है, मैं ये प्रश्न का उत्तर भरत भाई से भी चाहता हूँ और चेतन भाई से भी चाहता हूँ, प्लीज
उनका नाम लिख के दे सकते
हैं। तुम्हारा जो प्रश्न है वही प्रश्न गुरुदेव को किया हुआ था किसी मुक्त ने, तो गुरुदेव ने उसका खुलासा कर दिया कि ध्रुव में कुछ भी फेरफार नहीं होता है, तो ध्रुव में फेरफार नहीं होता है तो इनकी जो बातें आती है प्रतिपादन आता है कि ध्रुव में आता है और ध्रुव में जाता है, तो गुरुदेव ने उसका खुलासा कर दिया कि ये तो व्यवहार की बात है, वेद ने इसे कहा जाता है, बाकी वास्तव में कुछ परंपरा में फेरफार नहीं होता है।
ये सत्य है कि वो व्यवहार से कहा गया है, उसमें कुछ होता नहीं।
बराबर है, मगर वो पर्याय तो सब निमग्न है ही, भूत की और भविष्य की पर्याय निमग्न है, इस प्रकार की बात इसमें भी आई है, गुरुदेव ने भी ली है और वो बात जो है वो नाग से वो रामसेन आचार्य ने तत्वानुशासन में ली है, ये भूत की और भविष्य की पर्याय है,
उन्हें तो अकेले भविष्य की ली
है, नहीं भूतों पर
रामसेन ने भविष्य की अकेले ली, अरण सिद्धादी की पर्याय
नहीं, सब सब पर्याय है, अथवा भाविनो भूता स्व पर्याय भाविनो भूता अथवा भाविनो भूता, यह मैं आपको बता दूंगा, अथवा भाविनो भूता स्व पर्याय तदात्मका आसते द्रव्य रूपेण सर्वद्रव्येषु सर्वदा, भूत और भविष्य की सब पर्याय सब द्रव्य में, ये तो अपने तपन तो अभी अपने आत्मद्रव्य की बात करते हैं मगर सब द्रव्य में इस प्रकार से रही हुई है, तो इस प्रकार वो उधर जो प्रकरण चलता है वो तो अरियन भगवान का मैं ध्यान करता हूँ तो उसमें क्या है, तो वो अरियन भगवान का यदि ध्यान करे तो वो तो झूठमूठ है, तो कि नहीं ऐसा नहीं है, अरियन भगवान का यदि वो मैं ही अरियन होने वाला हूँ इस प्रकार की पर्याय अभी द्रव्य में निमग्न है, भले अभी मैं छदमस्त हूँ मगर वो मैं ही अरियन होने वाला हूँ, तो इस प्रकार की ध्यान करो तो उसमें कुछ गलत नहीं है और इसका फल भी मेरे को मिलता है, मेरे को आनंद आता है, इस प्रकार से उस प्रकरण में ये न्याय उन्होंने दिया हुआ है, आचार्य को मन दिया है भूत की और भविष्य की भी।
बात तो यही है कि भूतकाल की पर्याय योग्यता रूप अंदर है और भविष्य की जो है वो शक्ति में से व्यक्त होकर बाहर आती है, वो आना जाना किसी भी अपेक्षा से बोला जाता है ध्रुव में वो व्यवहार है, अपने को ये मेन समझना है, अगर अंदर में पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है अंदर में, पर्याय का भाव पड़ा है अंदर और वो भाव जो है वो भाव के अनुरूप प्रकट होती है तब उसको पर्याय बोला जाता है, ऐसा स्पष्टीकरण गुरुदेव ने भी किया है कि वो अंदर में उसका भाव है वो गुण रूप है, उसको पर्याय है ऐसे नहीं समझना, वो गुण रूप ही है अंदर में, इसमें भी आया है 49 कोई में
वर्तमान पर्याय का भाव योग्यता रूप नहीं है उसके
नहीं वो है ना शक्ति रूप है
उस वर्तमान पर्याय को तो हमेशा बाद करना भूत भविष्य को इसे योग्यता रूप स्वीकार करना
हाँ
वर्तमान पर्याय की भी तो योग्यता है ना उसमें
वर्तमान पर्याय जो बाहर आती है ना उसकी शक्ति तो अंदर में रह जाती है उसकी व्यक्ति बाहर आती है वो शक्ति सभी पर्यायों की अंदर में रहती है वो बाहर निकलती नहीं है उसकी व्यक्ति ही बाहर आती है वर्तमान पर्याय की और भूत की भी अंदर में योग्यता है भविष्य की शक्ति भी अंदर में रहती है वर्तमान की भी शक्ति अंदर में रहती है वर्तमान पर्याय प्रकट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्याय का अंश वहां खाली हो गया है वो उसकी शक्ति वहां रहती है और पर्याय व्यक्त होती है उसको बोला जाता है वर्तमान पर्याय प्रकट है और वर्तमान पर्याय निर्णय करती है वो उसकी शक्ति अंदर में रहती है शक्ति अंदर से बाहर नहीं आती है शक्ति की व्यक्ति बाहर आती है वही पर्याय की शक्ति अंदर में है अभी भी
वर्तमान पर्याय की भी शक्ति है और भूत भविष्य की पर्याय भी शक्ति रूप है
हाँ है।
तो इसलिए वो शक्ति पुंज ही रहा
हाँ तो वो
भूत भविष्य की पर्याय शामिल है
ऐसा है भूत भविष्य की पर्याय शामिल है उसका अर्थ अपन जो अपने अपन समझते हैं ना ऐसा नहीं है भूत भविष्य की पर्याय का मतलब ये है कि भूतकाल की पर्याय तो वेग हो गई सब वो अंदर चली गई तो उसको गुरुदेव ने योग्यता कहा है क्योंकि योग्यता की व्यक्ति नहीं होती है और भविष्य की पर्याय को शक्ति कहा है क्योंकि शक्ति की व्यक्ति होती है तो ये इतना फर्क है इसमें और दूसरा कि वर्तमान में जो पर्याय प्रकट है उत्पाद वो उत्पाद रूप है वो शक्ति अंदर में तो वर्तमान पर्याय की भी अंदर में प्रकट होने की शक्ति तो अंदर में रहती है उसकी व्यक्ति बाहर आती है और व्यक्ति बाहर आती है उसको पर्याय बोला जाता है तो वो सब पर्याय अंदर में पर्याय की शक्ति और योग्यता तो अंदर में रहती ही है इवन वर्तमान पर्याय की शक्ति रूप से तो अंदर में है ही वो व्यक्त बाहर आया है उसका वो ऐसा खंड नहीं होता है उधर अंदर में ध्रुव में
वर्तमान पर्याय शक्ति रूप से है अंदर में ऐसा गुरुदेव ने कहा है
वो तो ऐसा ही है वो तीसरे बोल में जो
गुरुदेव कहते नहीं थे
हाँ मगर वो देखो गुरुदेव बोलते नहीं थे गुरुदेव ऐसा तो बोलते थे जरूर कि वधगढ़ से जुदा आत्मा है वधगढ़ से जुदा आत्मा है तो वधगढ़ से जुदा आत्मा उसका मतलब यही होता है कि पर्याय में जो वधगढ़ होती है वो अंदर ध्रुव में नहीं है वधगढ़ अंदर ध्रुव में नहीं होती है वो पर्याय में पर्याय बाहर आती है उसको बोला जाता है वधगढ़ अंदर में तो शक्ति जैसी है ऐसी ही रहती है ऐसा मेरा तो मंतव्य ऐसा है
एक मिनट में बोल दूं जो पर्याय है वो उत्पाद व्यय रूप है पर्याय की जो योग्यता है वो पारणामिक भाव रूप है क्या कहा क्योंकि त्रिकाल में जितनी भी पर्याय हैं उन समस्त पर्यायों के पिंड को द्रव कहते हैं तो वो जो समस्त पर्याय प्रकट होती वे उत्पाद व्यय रूप रहती जो योग्यता रहती है वो त्रिकाल बनी रहती है अब हम जो कहते हैं ना कि ये पर्याय इसमें मग्न हो गई या डूब गई और ये नई उत्पन्न हो गई वो पर्याय उत्पन्न हुई है योग्यता ना तो डूबी है ना उत्पन्न हुई है ना कुछ हुआ है योग्यता तो ज्यों की त्यों बनी रहती है बस ये है कि जो वर्तमान पर्याय में पूर्व में वर्तमान जो पर्याय है वो भूतकाल में जाती है तो वो व्यय हो जाती है पर्याय लेकिन योग्यता बनी रहती है और वो योग्यता जितनी अनंत हो गई है भूतकाल की वे भी योग्यताएं पड़ी है वर्तमान में जो बनने वाली है पर्याय उसकी भी योग्यता पड़ी है और अनंत जो आने वाली है पर्याय उनकी भी योग्यताएं पड़ी है और वे सारी योग्यताएं पारणामिक भाव हो गई
आप जो योग्यता कहते हैं वो ही जितन भाई शक्ति या गुरु कहते हैं
हाँ ये मेरा प्रश्न था होने वाली पर्याय को उनका शक्ति की
उसमें शक्ति रूप शक्ति रूप योग्यता भी बोला जाता है और शक्ति बोलना ज्यादा उचित है उसका अर्थ ये है कि शक्ति की व्यक्ति होती है पूर्व पर्याय व्यय होकर अंदर चली गई वो अनंत काल तक उसकी कोई वापसी आने वाली नहीं है इसीलिए उसको योग्यता ही बोला जाता है और भविष्य की पर्याय शक्ति में से व्यक्त होने वाली है उसलिए उसको शक्ति की व्यक्ति बोलना ज्यादा उचित लगता है
जितिन बाप ऐसा भी बोला था कि भूतकाल की पर्याय को अपन योग्यता इसीलिए बोलते थे कि अपन कह सकते हैं कि 100 साल पहले मैं ये था और मैंने ये किया वो जानने की योग्यता है तो इसके लिए उसको योग्यता की
तो वो तो केवल ज्ञान की अपेक्षा बात हुई थी बराबर है वो तो ऐसा ही है
अगला क्वेश्चन उत्तम चंद्र के लिए है अर्जुन ने क्या देखा था ये आपने दृष्टिकोण शैली से बताया लेकिन उसी समय अर्जुन ने ज्ञान प्रधान शैली से क्या देखा?
दृष्टांत एकांगी होता है, सर्वांगी नहीं होता है, इसलिए दृष्टांत में प्रश्न नहीं किया जाता, दृष्टांत से सिद्धांत समझा जाता है।
पूरा दृष्टांत का ही ऑपरेशन करके पूछ रहे
अगला सवाल है राकेश जी के लिए। गुणों में व्यंजन पर्याय समझाइए और राग को गुण पर्याय कहा है, कभी ऐसे कहा था?
हाँ देखिए, ये विषय थोड़ा सा अपने यहाँ चलता नहीं है, और क्यों नहीं चलता है उसका कारण ये है कि जो अपनी सिद्धांत प्रवेशिका है बरिया जी की भी, और अपने जो अपने पढ़ाते शिविरों में लघु सिद्धांत प्रवेशिका, उसमें तो वो बाल बोधनी परिभाषाएं दी है, इसलिए उन्होंने तो वहां पर अर्थ पर्याय माने गुण पर्याय और व्यंजन पर्याय माने द्रव्य पर्याय ऐसी उन्होंने व्याख्या कर दी है। लेकिन यदि हम इसको डिटेल में समझना चाहें, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय को, द्रव्य पर्याय, गुण पर्यायों को, तो हमको दूसरे ग्रंथों को देखना होगा जहां पर डिटेल में इनकी व्याख्या है। तो जहां पर भी अर्थ पर्याय की व्याख्या आती है तो उसमें यहां तक लिखा है अगुरु लघु निमित्त का, जो अगुरु लघु गुण के निमित्त से होती है और स्वाभाविक होती है उनको अर्थ पर्याय कहा गया है, जो जो वैभाविक होती है उनको अर्थ पर्याय भी नहीं कहते। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर गुणों की भी अर्थ पर्याय भी होती हैं और व्यंजन पर्याय भी होती हैं। एक तो धवला का एक एकदम डायरेक्ट मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मिच्छतम व्यंजन पर्याय ऐसा लिखा है उसमें कि मिथ्यात्व जो है वो व्यंजन पर्याय है। और व्यंजन पर्याय क्यों कहा? क्योंकि यह अनादि काल से है और जब उसका सम्मत होने पर नाश होगा। इतनी बड़ी पर्याय ना व्यंजन पर्याय माने विस्तूल पर्याय, व्यंजन पर्याय है, लेकिन उसमें जो सूक्ष्म सूक्ष्म समयवर्ती परिणमन होता है, जो सूक्ष्म समय एक एक समयवर्ती परिणमन होता है उसको अर्थ पर्याय कहते हैं, उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। लेकिन जो उसकी दीर्घकालिकता है इसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। इसलिए ऐसा गुणों में भी होता है, जैसे व्यंजन ये जो है ये श्रद्धा गुण की व्यंजन पर्याय है, ऐसी सम्यक तो हुआ तो ये श्रद्धा गुण की व्यंजन पर्याय है, लेकिन उसमें जो प्रति एक एक समयवर्ती जो सूक्ष्म परिणमन है वो उसकी अर्थ पर्याय होती है। यहां तक लिखा है कि बहुत सारी अर्थ पर्यायों को मिल करके एक व्यंजन पर्याय बनती है। एक एक समयवर्ती पर्याय सूक्ष्म पर्याय उनको यदि हम मिला दें, 100 साल की हमारी अर्थ पर्याय मिलाए हम अपने जीवन की, तो वो मिलकर के एक मनुष्य पर्याय बनती, मनुष्य पर्याय व्यंजन पर्याय। तो ऐसे व्यंजन पर्यायों के भेद करें तो सूक्ष्म पर्याय उसमें से अर्थ पर्याय निकलती है, और अर्थ पर्यायों का अभेद करें तो उससे व्यंजन पर्याय की निर्मिति होती है, ऐसा उसका स्वरूप है।
इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि जो ऐसा लगा जो भाई साहब ने बोला उसमें ये बात स्पष्ट हो रही है कि जो व्यंजन पर्याय है वो थोड़े हमारे ज्ञान में व्यक्त हो जाती है, तो जब तक वो ज्ञान में व्यक्त रहती है तो उसको प्रगट कहते हैं, और प्रगट के कारण प्रगट की जगह व्यंजन बोला जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? और वो जब सूक्ष्म रहती है तो प्रगट नहीं होती है, क्योंकि एक समय वर्ती प्रगट नहीं हो सकती, छत मस्त को प्रगट होगी वो असंख्या